लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे अपने घरों का पलायन करने वाले आप प्रवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध अथवा भूख के कारणवश खतरों और हिंसा से भरी यात्राएं करने के लिए मजबूर होते हैं, ताकि मेजबान देशों में उन्हें स्वागत सत्कार और नए अवसर मिल सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर विश्व के विभिन्न स्थानों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi si celebra la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम नशाखोरी और अवैध तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाते हैं, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा सन 1987 में की गई थी। इस वर्ष की विषय वस्तु है,
Le prove sono chiare. Bisogna investire nella prevenzione.
लक्षण हमारे लिए स्पष्ट हैं, हम इसके रोकथाम हेतु निवेश करें। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस बात को सुनिश्चित किया, जहां नशाखोरी होती वहां का समुदाय कमजोर हो जाता है। यह मानवीय शक्ति और नैतिक ताने बाने को कमजोर बना देती है। यह हमारे अनुमानित मूल्यों को कमजोर करती है। यह जीने और मानव समाज को बेहतर बनाने में हमारी इच्छा को नष्ट कर देती है। इसके साथ हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हर नशा ग्रसित अपने साथ एक अलग व्यक्तिगत कहानी को बयां करता है, जिसे सुनना, समझना, प्यार करना और जहां तक संभव हो उसकी चंगाई और उसे शुद्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्हें पहले से अधिक ईश्वर के संतान स्वरूप सम्मान प्राप्त है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यद्यपि हम नशा व्यापारियों और तस्करों के विचारों और कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वे हत्यारे हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस संबंध में एक चिकित्सीय समुदाय की भेंट करते हुए कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए कहा था,
Dico ai trafficanti di droga che riflettano sul male che stanno facendo a una moltitudine di giovani e di adulti.
मैं नशा तस्करों से कहता हूँ कि वे उस हानि पर विचार करें जिसे वे समाज के हर स्तर में असंख्य युवाओं और वयस्कों पर कर रहे हैं। ईश्वर आपके इस कार्य के लिए लेखा लेंगे। हम मानवीय सम्मान का दमन इस भांति नहीं कर सकते हैं। नशीली चीजों पर निर्भरता में कमी उनकी खपत से मुक्ति पाकर हासिल नहीं की जा सकती है। यह एक ख्वाब है, संत पापा ने कहा, जैसे कि कुछ देशों में यह प्रस्तावित या पहले ही लागू किया जा चुका है। नशे के आदि लोग और उनके परिवारों की कई दुखद कहानियों को जानने के बाद मुझे विश्वास है कि इन खतरनाक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी को समाप्त करना नैतिक रूप से आवश्यक है। हम कितने ही मौत के सौदागरों को पाते हैं जो किसी भी कीमत पर शक्ति और धन हासिल करना चाहते हैं। यह महामारी है जो हिंसा पैदा करती है और पीड़ा और मौत के बीज बोती है, जिसे खत्म करने के लिए समाज में साहस की जरूरत है, संत पापा ने कहा। नशीली चीजों के उत्पादन और तस्करी का हमारे सामान्य निवास पर भी एक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेज़न बेसिन में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नशीली चीजों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने का एक अन्य कारगर तरीका न्याय को बढ़ावा देना है, युवाओं को मूल्यों की शिक्षा देना जो व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन का निर्माण करने में मदद करती है। इसके साथ ही हमें उनके संग चलने और उनमें आशा और बेहतर भविष्य की आस जगानी है जो जरूरत की स्थिति में है। संत पापा ने कहा, अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान मैंने धर्म प्रांतों और देशों की भेंट की जहां बहुत सारे समुदाय सुसमाचार की प्रेरणा से जीवन यापन करते हैं। वे अपने में निष्ठावान पुरोहित समर्पित नर नारियों का जीवन और लोक धर्मियों के समुदाय हैं, जो अच्छाई और आशा के साक्ष्य द्वारा भले समारी के दृष्टांत को साकार करते हैं। इसी तरह मैं बहुत सारे धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के द्वारा किए गए प्रयासों से सांत्वना का अनुभव करता हूं, जिन्होंने नशा के शिकार लोगों के उपचार, नशा उन्मूलन, इसकी रोकथाम के संबंध में उचित कानून और नीतियों को बढ़ावा दिया है। संत पापा ने पालापा लातिनी अमेरिकी प्रेरितिक और नशा निवारण केंद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यह नेटवर्क इस बात को स्वीकारता है कि विभिन्न तरह के लत, नशा, मनोवैज्ञानिक चीजों और अन्य प्रकार की लत, अश्लील साहित्य, नई प्रौद्योगिकी आदि एक ऐसी समस्या है जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मतभेदों से परे बिना किसी भेदभाव और उम्र के हम सबों को प्रभावित करती है। विभिन्नताओं के बावजूद हम खुद को एक समुदाय के रूप में संगठित करना चाहते हैं, जिससे हम अनुभव, उत्साह, कठिनाइयों को साझा कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने दक्षिणी अफ्रीका के धर्माधीशकों का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने 2023 के नवंबर महीने में एक बैठक बुलाई थी जिसकी विषय वस्तु थी युवाओं को शांति और आशा के प्रतीक स्वरूप सशक्त करना। उस बैठक में भाग लिए युवा प्रतिनिधियों ने उसे पूरे प्रांत के युवाओं के लिए स्वास्थ्य और सक्रियता का एक महत्वपूर्ण कदम घोषित किया था। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की थी, हम नशीली चीजों के उपयोग के विरुद्ध मेल मिलाप और सहायता कर्मियों की भांति कार्य करने की प्रतिबद्धता को स्वीकारते
हैं।
हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे सदैव एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, नशा पान की बुरी लत ने विश्व के लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इसे गैर कानूनी रूप में उत्पादन और तस्करी की स्थिति में हम अपने में उदासीन नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम यूं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने यीशु का उदाहरण देते हुए कहा, यीशु रुकते हैं, वे निकट आते और घावों को चंगा करते हैं। उनकी निकटता की यह शैली हमें भी कार्य करने का निमंत्रण देती है। हम संवेदनशील और दुख भरी स्थितियों में रुकने, अकेलेपन और दुख भरे क्षणों को जानने और सुनने को कहे जाते हैं। हम झुककर नशे के गुलामी में गिरे हुए लोगों को उठाने और उन्हें जीवन में वापस लाने को कहे जाते हैं। संत पापा ने कहा,
preghiamo per questi criminali che spendono e danno la droga ai giovani. Sono criminali, sono assassini. Preghiamo per la loro conversione.
इसके साथ ही हम उन अपराधियों के लिए भी प्रार्थना करें जो हत्यारे हैं, जो युवाओं के बीच नशा बिक्री करते हैं। हम उनके मन परिवर्तन हेतु प्रार्थना करें। इस विश्व नशा दिवस के अवसर पर ख्रिस्तीय और कलिसियाई समुदाय के रूप में हम नशा के विरुद्ध अपनी प्रार्थना और निष्ठा में नवीनता लाएं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum. sì, nomen Domine benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने रोम के संरक्षक संतों को आमंत्रित किया ताकि युद्ध से पीड़ित आबादी को जल्द ही शांति मिल सके। विभिन्न भाषाओं में विश्वासियों को अभिवादन में संत पापा ने नशे की लत की चपेट में आए लोगों की मदद करने और उनका साथ देने के लिए कहा। अपने दिल में हमेशा शांति की इच्छा के साथ संत पापा आज सुबह 26 जून को आम दर्शन समारोह के अंत में इतालवी भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए युद्ध से पीड़ित आबादी, पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल और म्यांमार को संत पेत्रुस और संत पौलुस की मध्यस्थता में सौंपा, जिनका पर्व कलीसिया शनिवार 29 जून को मनाएगी ताकि उन्हें जल्द से जल्द शांति मिल सके। संत पापा ने सभी को इन दोनों प्रेरितों का अनुसरण करते हुए मिशनरी शिष्य बनने, हर जगह सुसमाचार की सुंदरता का गवाह बनने हेतु आमंत्रित किया। पोलिश तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का जिक्र करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने याद किया कि छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। इस समय कई युवा पहली बार नशीली दवाओं के करीब पहुंचेंगे, इसलिए उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी को बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की याद दिलाएगा। फ्रांसीसी भाषी विश्वासियों से बात करते हुए संत पापा ने उन्हें एक विशिष्ट आदेश सौंपा। दया के सुसमाचार के सेवकों के रूप में हम नशीली दवाओं के कारण होने वाली पीड़ा को कम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, ताकि जो लोग नशे की लत की चपेट में हैं, उन्हें हमारी मदद और हमारा साथ मिल सके। जर्मन भाषी तीर्थयात्रियों को संत पापा ने याद दिलाया कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग हमारे समय के कई लोगों की महान आंतरिक पीड़ा को इंगित करता है। सभी को हमारे पड़ोसी के प्रति अधिक चौकस रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि समय पर समझने में सक्षम हो कि किन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। और अरबी भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई मानव गरिमा और सभी के लिए बेहतर भविष्य की आशा की लड़ाई है। और बुधवार आमदर्शन समारोह से पहले संत पापा फ्रांसिस ने इटली बोलोनिया के मुसलमानों के एक समूह से मुलाकात की। संत पापा ने वाटिकन में शहर स्वागत करते हुए उनसे कहा, यीशु ने हमें एक दूसरे का भाइयों की तरह स्वागत करना सिखाया और यह सबसे पहले हम ख्रिस्तियों, यहूदियों और मुसलमानों पर लागू होता है जो एक ईश्वर की आराधना करते हैं और जो अलग अलग तरीकों से अब्राहम को विश्वास में पिता के रूप में संदर्भित करते हैं। आज की दुनिया में भाईचारे की हमारी गवाही अपरिहार्य और बहुत कीमती है और हम जिन्हें इस धार्मिक संबंध का उपहार मिला है उन्हें इन लोगों के प्रति खुला और स्वागत करने वाला होना चाहिए जो इसे साझा नहीं करते हैं, क्योंकि वे हम सभी की तरह एक मानव परिवार के सदस्य हैं। संत पापा ने कहा कि विशेष रूप से ख्रिस्तियों और मुसलमानों के बीच सच्चा और सम्मानजनक संवाद एक कर्तव्य है जो ईश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हैं। संत पापा ने कहा, वास्तव में एक पिता की इच्छा है कि उसके बच्चे एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें और यदि उनके बीच कोई भी कठिनाई या गलत फहमी उत्पन्न हो तो उन्हें विनम्रता और धैर्य के साथ किसी समझौते पर पहुंचने दें। इस संवाद के लिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों के प्रभावी मान्यता की आवश्यकता है। इन अधिकारों में सबसे ऊपर अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने धार्मिक विकल्पों के संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। अंत में संत पापा ने कहा कि वे जहां भी रहते हैं कैथोलिक कलीसिया के धर्माध्यक्ष पुरोहितों विश्वासियों के साथ आपसी सम्मान और दोस्ती में अच्छे संबंध बनाए रखें। दुनिया को विशेष रूप से इस ऐतिहासिक क्षण में सुसंगत विश्वासियों की आवश्यकता है जो सामाजिक और विश्व शांति के निर्माण और रखरखाव के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। उधर कैरेबियाई देश में उग्र हो रहे हिंसक गिरोहों का सामना करने के लिए केन्याई सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी सोमवार 24 जून की शाम को राजधानी नैरोबी से हैती के लिए रवाना हुई। इस खबर की घोषणा अफ्रीकी देश के आंतरिक मंत्री किथुरे किंडिकी ने की। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय पुलिस सेवा एजेंटों की टुकड़ी के पहले बैच को देखकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं जो हैती में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र मिशन का हिस्सा है। पिछले सोमवार को केन्या के राष्ट्रपति श्री विलियम रूटो ने 400 सैन्य कर्मियों के लिए एक प्रस्थान समारोह आयोजित किया जो हैती में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी है। लगभग 600 सैनिकों का एक और समूह बाद में शामिल होगा। केन्या के अलावा जमैका, बहामास, बारबाडोस, चाड और बांग्लादेश ने भी 2500 व्यक्ति मिशन के लिए कर्मियों का वादा किया है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि बड़े पैमाने पर हिंसा से निपटने का काम संभालने वाले पहले केन्याई पुलिस अधिकारी इस सप्ताह हैती पहुंचेंगे। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिल्लर ने संवाददाताओं से कहा, हमें सुरक्षा में अधिक मापनीय सुधार देखने की उम्मीद है, खासकर जब यह मानवीय सहायता और प्रमुख आर्थिक गतिविधियों तक पहुँचने से संबंधित है। केन्या ने जुलाई 2023 में कैरेबियाई राष्ट्र में हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल का नेतृत्व करने की पेशकश की थी जहां राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले गिरोह बड़े पैमाने पर हत्याएं, अपहरण और यौन हिंसा को अंजाम देते हैं। हैटियन प्रधानमंत्री गैरी कोनिल, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में शपथ ली, केन्या के समर्थन का स्वागत किया। कोनिल ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हैतियन सरकार और लोगों को उम्मीद है कि यह बहुराष्ट्रीय मिशन देश को स्थिर करने में मदद करने वाला आखिरी मिशन होगा ताकि वह अपने राजनीतिक वर्ग को नवीनीकृत कर सके और प्रभावी लोकतंत्र में लौट सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।